ओम शांति। तो आज हम मुरली का जो सेकंड पार्ट था, संडे की मुरली 1986, 27 मार्च, पहला पार्ट हमने कल रिवाइज किया, सदा किसने ही बनो। आज इसका दूसरा पार्ट है जो कि अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए प्रश्नों के रूप में है। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, मुख्य रूप से संतुष्टता के ऊपर विशेष इन प्रश्नों के अंतर्गत चर्चा की हुई है। तो हम देखेंगे कि ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता का कितना महत्व है। कहा जाता है संतुष्टता सबसे बड़ा धन है, संतुष्टता में परम सुख समाया हुआ है। संतोष को धन कहा जाता है। वैसे भी कहा जाता है साहस जो है, साहस, हिम्मत, साहस सभी गुणों का राजा है, तो संतुष्टता सभी गुणों की रानी है। वैसे भी अगर राजा को कुछ ना कुछ बताना होता है या उनसे कुछ बातचीत करनी होती है, तो रानी के थ्रू अगर जाया जाए तो कहा जाता है कार्य बहुत सरल हो जाता है। तो इसी तरह से संतुष्टता जो हमारे सर्व गुणों की एक रानी है, अर्थात अगर हम संतुष्टता को ग्रहण कर लेते हैं तो सारे के सारे गुण हमारे पीछे आ जाएंगे। संतुष्टता एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। संतुष्टता ये नहीं है कि हम जो है जैसे है उसमें ही राजी रहें, वो एक अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में प्रोग्रेस ना करें, या हम बिजनेस में हैं, व्यापारिक क्षेत्र में हैं, तो हम वहाँ प्रोग्रेस ना करें। प्रोग्रेस तो करनी ही होती है, लेकिन वो प्रोग्रेस करते हुए कहीं ना कहीं हमारी पारिवारिक दूरियां ना बढ़ती जाएं, सामाजिक दूरियां ना बढ़ती जाएं, रिश्तों की दूरियां ना बढ़ती जाएं। एक संतुलित जीवन होना चाहिए। तो बाबा इस मुरली में जिक्र कर रहे हैं कि ब्राह्मण जीवन का जो विशेष गुण है अथवा श्रृंगार है या खजाना कहो, वो है संतुष्टता। यहाँ बाबा ने एक एग्जांपल दिया कि जैसे कोई प्यारी चीज़ होती है तो उसको छोड़ते नहीं, इसी तरह संतुष्टता भी एक बहुत प्रिय वस्तु है हमारे जीवन की, जिसको हम छोड़े नहीं। वो ब्राह्मण जीवन की एक विशेषता है, एक दर्पण है। अर्थात अगर हम अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हैं, अपने पुरुषार्थ से, अपने ब्राह्मण जीवन से, अपने ब्राह्मण परिवार से, बाबा से, जो कि कल भी एक स्लोगन था मुरली में कि संतुष्ट मणियाँ जो हैं वो प्रभु प्रिय होती हैं, परिवार प्रिय होती हैं और स्वयं भी प्रिय होती हैं, तो वो हमारे जीवन का दर्पण है और वो दर्पण हमारे चेहरे से दिखाई देता है खुशी के रूप में, कि हम कहाँ तक संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। यदि हमारे ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता नहीं है तो जीवन कहते बाबा कितने साधारण है। आज संसार में हम देखें तो संतुष्टता का बहुत अभाव है, और उसका कारण है बहुत प्रकार की अनावश्यक इच्छाएं, अतिरिक्त इच्छाएं जिसको कहेंगे, कामनाएं हैं, जिन कामनाओं के बिना हमारा जीवन बहुत सहज चल सकता है, लेकिन उन कामनाओं को हासिल करने के लिए, उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए हम कई प्रकार के प्रयास करते हैं। वो प्रयास करते करते कहीं ना कहीं जो हमारा आंतरिक जाना है संतुष्टता का है, उससे हम दूर चले जाते हैं। जैसे कहते हैं, अगर कोई चींटी जा रही है अपने मुंह में कुछ अनाज का दाना लेकर, और रास्ते में अगर उसको दूसरा अनाज का दाना दिख जाए, तो वो उसको पहला दाना छोड़ना पड़ता है, तो ही दूसरा हासिल होता है। अर्थात ये एक समय में एक ही चीज़ मिलेगी, दोनों नहीं मिल सकती। जैसे हमने कई बार देखा है बंदर, यहाँ बूढ़ मोंडा वो रास्ते में भी काफ़ी होते हैं, अगर उसको कुछ खिलाता है, हाथ से देता है, तो लेता जाता है, वो लेता जाता है। लेकिन जब उसके हाथ भरपूर हो जाते हैं, तो बाकी चीज़ें वो नहीं ले पाता। बाकी चीज़ें लेने के लिए फिर उसको पहले वाली चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। लेकिन होता है क्या, असंतुष्टता कहाँ से पनपती है कि हम पहले वाली चीज़ों को ही पकड़ के रखना चाहते हैं, और जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको ही पकड़ के रखना चाहते हैं। पहली भी मिल जाए, दूसरी भी मिल जाए, और चीज़ आती जाए, तो इससे क्या है, हमारे मन में असंतोष पैदा होता है, क्योंकि सभी चीज़ें तो हमारे हाथ में आ नहीं सकती। लेकिन बाबा ने जो हमको इतना बड़ा खजाना दिया है, जिसमें संसार के सारे ही सुख समाए हुए हैं, अध्यात्म का खजाना, ज्ञान का खजाना, क्योंकि संतुष्टता वास्तव में हम आत्माओं की एक आंतरिक सूक्ष्म रूप से एक खुराक है। वो एक शक्ति है, वो हमारे मूल्य हैं, वो हमारी खुशी है, क्योंकि अविनाशी आत्मा को अविनाशी चीज़ों से ही तृप्ति होगी। संसार के इन विषय भोगों में, व्यक्ति वस्तु पदार्थ में, जो कल बाबा ने बताया था तीसरे नंबर वाले जो स्नेही हैं, कैसे वो अपने जीवन में स्नेह का अभाव रहता है, क्योंकि दूसरी दूसरी बातों को हमने पकड़ के रखा हुआ है, इसलिए वो परमात्म स्नेह से कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। चाहे उन्होंने अपने देह से लगाव है, चाहे अपने संबंधों से है कोई, या पुराने संस्कारों से है। तो ऐसे ही संतुष्टता एक ऐसी चीज़ है जो हमारी आंतरिक पूंजी है। तो बाबा कहते संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम इस खजाने को हासिल करना चाहते हैं, तो जैसे कल भी बाबा ने जिक्र किया कि पढ़ाई से प्रीत, जिस बच्चे को पढ़ाई से प्रीत है, तो वो बहुत शक्तिशाली रहते हैं। तो संतुष्टता भी एक शक्ति के रूप में हम आत्मा के अंदर जमा होती है। इसलिए ब्राह्मण लाइफ इस संसार की सबसे सर्वोत्तम लाइफ है। इस लाइफ में सर्वोत्तम सुख समाया हुआ है। ये ब्राह्मण लाइफ हमारे सर्वोत्तम उपलब्धि है, जो हमको स्वयं भगवान ने गिफ्ट के रूप में दी है। हमें इस अमूल्य खजाने को संजो के रखना है। तो ये जो पढ़ाई है, इसको हम अच्छी तरह से अगर पढ़ते रहेंगे और ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहेंगे, जो बाबा ने अगले प्रश्न में जिक्र किया है, तो हमारे जीवन में संतुष्टता आती रहेगी। और असंतुष्टता तब पैदा होती है जब हम आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसलिए बाबा ने दूसरे प्रश्न में कहा कि संतुष्ट मणियों की विशेषताएं क्या होंगी। तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मणियाँ कभी भी किसी भी कारण से, चाहे वो उनके अपने संस्कार हैं या किसी प्रकार का कोई वायुमंडल है, उस वायुमंडल के प्रभाव से, या अन्य आत्माओं से, या स्वयं के कोई भी संस्कार हैं, उससे असंतुष्ट नहीं होंगी। अर्थात अगर हम ज्ञान को अपने जीवन में अच्छी तरह से लाते हैं, तो हमारे संस्कारों में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। नहीं तो कहीं ना कहीं हमारे संस्कार वो आश्रित जीव जो समाई हुई थी पहले, वो रहती है, तो फिर असंतुष्टता पैदा होती है। जब हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो फिर असंतुष्टता भी विदाई लेने लगती है। एक आंतरिक सेटिस्फेक्शन जो मिलती है स्वयं के परिवर्तन में, उससे एक अलग ही संतोष का भाव अंदर में पैदा होता है। वह कहते हैं ऐसी आत्माएं जो हैं वो कभी ये नहीं कहेंगी कि हम तो संतुष्ट हैं लेकिन दूसरे संतुष्ट करते हैं। कुछ भी हो जाए, संतुष्ट मणि बाबा कहते अपनी संतुष्टता की विशेषता को छोड़ नहीं सकती, अर्थात दूसरे के स्वभाव संस्कार को भी हम देखकर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि हमें बाबा ने इतना रमणीय सुंदर रोचक तरीके से ज्ञान दिया है, स्पष्ट ज्ञान दिया है, सहज ज्ञान दिया है, सरल ज्ञान दिया है कि सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। ऐसे हाथ की उंगलियां सभी बराबर नहीं हैं, लेकिन हम सबसे प्यार करते हैं ना, सब उंगलियों को केयर करते हैं। इसी तरह ब्राह्मण परिवार है, हर एक की आत्मा की विशेषता अपनी अपनी है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, हर एक के अपने अपने संस्कार है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना अपना पुरुषार्थ है और भविष्य भी अपना अपना पद है। तो जब हम इस बात को अपने जीवन में समा लेते हैं तो हम किसी के जीवन से प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए बाबा कहते ये विशेषताएं जो हैं, संतुष्ट मणियों की विशेषताएं हैं कि वो किसी से भी प्रभावित नहीं होंगी और संतुष्ट नहीं होंगे किसी भी तरीके से। नेक्स्ट थर्ड प्रश्न है, थर्ड क्वेश्चन, बाबा ने निशानियाँ बताई हैं जो संतुष्ट आत्माएं हैं उनकी निशानियाँ क्या हैं। बाबा कहते संतुष्टता जो है वो स्वतः ही सबका स्नेह बना देती है, उसके प्रति स्वतः ही सबका स्नेह रहता है, क्योंकि उसकी अपेक्षाएं इतनी होती नहीं हैं, अनावश्यक इच्छाएं नहीं होती हैं। और कई बार ये भी देखा गया परिवारों में अगर एक व्यक्ति असंतुष्ट रहता है तो वो कईयों को असंतुष्ट करने की भी चेष्टा करता है, अर्थात अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों से कुछ अर्जित करना चाहता है, कामनाएं रखता है दूसरों के प्रति, मुंह से ये चीज़ मिल जाए। और अगर वो अपेक्षा उसकी पूरी नहीं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो उनको बार 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 कोसता रहेगा या किसी न किसी तरीके से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। लेकिन जो संतुष्ट आत्मा है वो परिवार में भी स्नेही रहेगी, थोड़े में भी खुश रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं उसका स्नेह जो है सबके प्रति स्वतः होता है। बाबा कहते हैं संतुष्ट आत्मा हर कार्य में गोल्डन चांस ले लेती है, उनकी सोचना कहना नहीं पड़ता है कि हमको कोई सेवा मिले, हमको कोई पूछे। जिस व्यक्ति के अंदर संतुष्टता की विशेषता है उसे हर कोई चाहता है कि ये भी कार्य में सहयोगी बने, क्योंकि उसकी इच्छाएं इतनी नहीं होती हैं। इसलिए हर सेवा में, हर कार्य में सहयोगी बनाने के लिए सामने से ऑफर मिलेगा, चांस मिलेगा, उनको सेवाओं की तलाश करनी नहीं पड़ेगी बल्कि सेवाएं उनके कदमों में स्वयं आएंगी। और जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वो हर एक के साथ एडजस्ट होता है, स्वभाव संस्कार को मिलाने वाला होता है और दूसरों के समीप भी रहेगा, हर कार्य में सहयोगी बनेगा और किसी के भी स्वभाव संस्कार से घबराएगा नहीं, क्योंकि एडजस्टेबल है, वो अपने आप को मोल्ड कर लेता है, घबराता नहीं है कि इसके संस्कार तो ऐसे हैं मैं कैसे इससे चल पाऊंगा। लेकिन संतुष्ट आत्माएं अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी उन्नति के लिए, यज्ञ की उन्नति के लिए, परिवार की उन्नति के लिए, बाबा की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने संस्कारों को एडजस्ट करके आगे बढ़ने का रास्ता तलाश लेती है। इसलिए भी संतुष्ट मणि की विशेषताएं हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में रहता है कि हमने बाबा से क्या क्या पाया है, अपार प्राप्तियां हुई हैं। जब अपार प्राप्तियों की स्मृति रहती है तो संसार की विनाशी इच्छाओं के पीछे वो भागती नहीं है, क्योंकि वो तृप्त हो गई है, अविनाशी ज्ञान मिल गया है, अविनाशी पूंजी मिल गई है, इसलिए वो सदा तृप्त रहती है। दूसरा एक विशेष उनकी एक विशेष क्वालिटी होगी कि सभी की दिल होगी कि इनसे बात करें। प्यार, बाबा कहते हैं वो प्यार लेने के पात्र होते हैं। हर कोई चाहेगा कि इनसे बैठें, इनसे बात करें, क्योंकि उनसे एक अलग प्रकार के ही वाइब्रेशन आते हैं। जिस व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं तो उस व्यक्ति के पास जाने से हर कोई दूरी बना के रखता है, लेकिन जो व्यक्ति कुछ चाहता ही नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, संतुष्ट है, चेहरा उसका खुशी से दमकता रहता है, रौनक है चेहरे पर, अच्छे बोल निकलते हैं उसके मुख से, कुछ ना कुछ देने की भावना रहती है उसमें, तो हर कोई उस आत्मा के प्रति आकर्षित होता है। हर कोई उसके पास जाना चाहता है, बोलना चाहता है, कुछ उसके मुख से अच्छे बोल निकलने वो सुनना चाहता है। इसलिए संतुष्ट आत्मा की कितनी सारी विशेषताएं हैं। बाबा कहते हैं संतुष्टता ही महानता है, इसलिए बाबा कहते हैं संतुष्ट। और विशेष आत्मा विशेष की क्वालिटी बताई बाबा ने कि वो सदा मायाजित होती हैं, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, अर्थात वो मर्यादा की फिर के अंदर रहती हैं। जितना हम मर्यादाओं के अंदर में रहते हैं, बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उतना माया जीत स्वतः ही बन जाते हैं। माया जीत बनने का प्रयास करना नहीं पड़ता है। बाबा कहते हैं उन आत्माओं वो आत्मा माया को दूर से पहचान लेती हैं, किस रूप में माया हमारे पास आ रही है, तो पहले से सतर्क रहती हैं, सचेत रहती हैं, सजग रहती हैं, जागरूक रहती हैं। इसलिए हमें अपने स्वयं जीवन में देखना है कि क्यों हमारे जीवन में असंतुष्टता है। अगर संतुष्टता का अभाव है तो कहीं ना कहीं हम मर्यादाओं की लकीर के बाहर जा रहे की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दूसरे के स्वभाव संस्कार को देखकर घबरा रहे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे के संस्कारों से प्रभावित हो रहे हैं, किसी वायुमंडल से प्रभावित हो रहे हैं, या कोई ऐसी बातें जो आजकल के माहौल में चल रही हैं उन बातों का अनावश्यक रूप से वर्णन कर रहे हैं। उन बातों का वर्णन करने से हमारे जीवन का कोई उत्थान होने वाला नहीं है, कोई प्रोग्रेस होने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम उन बातों में समय दे रहे हैं तो भी हम जैसे मर्यादा के लकीर से बाहर जा रहे हैं। जैसे बाबा ने नंबर वन से ही आत्माओं का कितनी अच्छी बात बताई कि वो आत्माएँ जो हैं वो प्रकृति और माया उनकी दासी बन जाएगी, नंबर वन से ही आत्माएँ, और उनका हर संकल्प हर समय जो है वो सेवा के प्रति लगेगा। माया और प्रकृति भी उनको सहयोग देगी, हिम्मत नहीं होगी उनकी, क्योंकि आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को डाला है और उसने ही आत्मा है। तो इसी तरह संतुष्ट मणियां भी जो है नंबर वन से ही आत्मा ही कही जा सकती हैं। फिर बाबा ने दो प्रश्न माया से संबंधित बताए हैं। एक तो बताया माया जीत बनने का सह साधन कौन सा है, और दूसरा अगर समय पर माया को नहीं पहचान पाते, बार बार धोखा खाते, तो उसका रीजन क्या है, कारण क्या है। तो बाबा एक ही बात बताते, बाबा कहते हैं पहचान कम होने का कारण है कि हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते हैं सदा, कभी चलते हैं कोई समय नहीं चलते, कोई समय बाबा को याद करते हैं, कोई समय नहीं याद करते। जैसे बताया समय प्रमाण स्नेह निभाने वाले ना, और कोई इसमें उमंगसा में रहेंगे, कोई इसमें नहीं रहेंगे, जो कल जिक्र किया था थर्ड नंबर की आत्माएं क्या था, स्मय प्रमाण, जब कोई मुसीबत समस्या आती है तो बाबा की याद में बैठेंगे, जब कोई ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं है, तब कम घूमेंगे फिरेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और जब समस्या आ गई तो बाबा के कमरे में चल जाएंगे, बाबा से उलाना करेंगे, शिकायत करेंगे, रोना करेंगे। लेकिन बाबा कहते सदा बाप की श्रेष्ठ मत पर चलो, तो माया से धोखा नहीं खाएंगे, सदा उमंग उत्साह में रहो। बाबा की आज्ञा क्या है कि सदा श्रीमत की लकीर के अंदर रहो, अगर नहीं रहते तो फिर माया समय पर धोखा देती है, क्योंकि बाबा कहते माया में भी परखने की शक्ति बहुत है, माया भी देखती है कि किस रूप की कमजोरी इनके पास में है, तो उसी कमजोरी की जो खिड़की है, वो दरवाज़ा है, तो उसी रास्ते से आती है। माया आके आने का रास्ता बाबा कहते हैं ही कमजोरी, हमें अपनी कमजोरियों की जांच करनी है कि कहाँ हमारे संकल्पों में कमजोरी है, या हमारी दृष्टि में है, सोच में है, बोल में है, कहीं ना कहीं संबंध संपर्क में है, या हम कर्म क्षेत्र पर आते हैं या साधनों का उपयोग करते हैं, तो कहाँ कहाँ हमारी कमजोरी जो है। हमें अगर हमारे अंदर कमजोरी है तो हमें उससे घबराना नहीं है, बल्कि उसको समाप्त करने की योजना तैयार करनी है और उस योजना पर पूरा अमल लाना है। तो फिर धीरे धीरे हम माया से मुक्त हो जाएंगे, फिर माया से धोखा नहीं खाएंगे। अगर हम बार बार धोखा खा रहे हैं तो बाबा की श्री मत पर हम नहीं चल रहे हैं। इसलिए स्वयं को सूक्ष्म रूप से स्वयं की जांच करनी है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और पांचवा प्रश्न है, माया जीत बनने का सह साधन कौन सा है। बहुत सुंदर बाबा ने युक्ति बताई, बाबा कहते सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः मर्यादाओं की कीड़ के अंदर रहना। बाबा कहते मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जो अनेक प्रकार के विकार आत्मा के अंदर समाये हुए हैं, आज इस विकार को छोड़े, कल उस विकार को छोड़े, परसों उस विकार को छोड़े, नहीं, एक एक विकार के पीछे भी मन करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, छूट जाएंगे। कब? जब बाबा कहते सदा साथ रहो, मर्यादाओं की कीड़ के अंदर रहो। तो फिर साथ रहने से क्या होगा, जैसा बाप वैसे बच्चे, है ना। वैसे भी दादी जानकी जी केवरी क्लास में कहते थे कि जिसको हम बार बार याद करते हैं तो उसके संस्कार हमारे में स्वतः ही आ जाते हैं। वैसे भी देखिए, अगर कोई दोस्त होते हैं आपस में तो उनके संस्कार धीरे धीरे आपस में मेल खाना शुरू कर देते हैं। लंबे समय से जब वो साथ में रहते हैं, संग का रंग लग जाता है। तो बाबा कहते हैं साथ रहो तो जैसा बाप वैसे आप बच्चे बन जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा, स्वतः लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बीज को छोड़ देते हैं, शाखाओं को पकड़ लेते हैं। शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अर्थात आज काम विकार को समाप्त किया, आज क्रोध को खत्म किया, जरूरत नहीं करने की। बाबा कहते स्वयं अपने आप ही स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ कब? बाबा कहते बीज रूप बाप को सदा साथ रखो तो सदा विजयी हो जाएंगे। माया का बीज ऐसे भस्म हो जाएगा वो फिर कभी उसका अंश भी पैदा नहीं होगा। नहीं तो एक भी अगर चिंगारी रहेगी तो एक चिंगारी पूरे जंगल को खा कर देती है, तबाह कर देती है, भस्म कर देती है। तो हमें सुंदर मौका दिया है बाबा ने इस ब्राह्मण जीवन में कि सूक्ष्म रूप से जो चिंगारी के रूप में अगर कमजोरियाँ हमारे अंदर हैं, चाहे वो संस्कारों के रूप में हैं, काम विकार के रूप में हैं, या क्रोध के रूप में हैं, तुम की जांच करें, लोभ के रूप में, अहंकार के रूप में है। और देखा गया है जैसे जैसे हम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते जाते रहे तो हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियों का अंदाज़ा भी तभी लग पाता है, नहीं तो मोटी मोटी कमजोरियों में ही हमारा जीवन ऐसे जाता रहता है और सूक्ष्म कमजोरियाँ रह जाती हैं अगर हम इस ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ को अपना नहीं बनाते हैं तो। इसलिए ये पुरुषार्थ, ये जीवन, ब्राह्मण जीवन, पुरुषार्थ एक मेहनत नहीं है। पुरुषार्थ अर्थात एक सुख का अनुभव करने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं है जिसमें मेहनत है, नहीं। पुरुषार्थ माना इस ज्ञान योग धारणा सेवा में बिजी रहना। जैसे पिछले संडे भी बाबा ने जो विशेषताएं बताई थी, रूह गुलाब की विशेषताएं, कि बाबा को खुशबू आती है कौन सी आत्माओं की, किसी की याद की खुशबू आती है, किसी की ज्ञान की खुशबू आती है, किसी की सेवा की खुशबू आती है, किसी की धारणा की। लेकिन बाबा कहते कोई कोई बच्चे हैं जो सर्व गुण संपन्न है, अर्थात जिनमें चारों सब्जेक्ट की खुशबू है, वो बच्चे दूर से आकर्षित करते हैं, वो सबको प्रिय लगते हैं। तो ऐसे ही इस ब्राह्मण जीवन में हम पुरुषार्थ के प्रति संजीदा रहें, गंभीर रहें। उस पुरुषार्थ में सुख समाया हुआ है, एक अतिदय सुख है, एक अनोखा सुख समाया हुआ है, और उससे हमारे जीवन में संतुष्टता रहेगी, नहीं तो कहीं ना कहीं असंतुष्टता के भाव पैदा होते रहेंगे। स्वयं से ही असंतुष्ट रहेंगे, दूसरों से संतुष्ट रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, इच्छाएँ बढ़ती जाएंगी, मन में अनेक प्रकार की कामनाएं बढ़ती जाएंगी, तो हमें स्वयं देखना है कि हम कितना संतुष्ट मणि बन के रहते हैं, हमारी संतुष्ट मणियों का प्रकाश दूसरों को प्रकाशित कर रहा है या नहीं, या स्वयं को हम अंधेरे में रख रहे हैं। दिन प्रतिदिन हमारी संतुष्टता का प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, दूसरों को भी संतुष्टता का अनुभव कराए, इस ब्राह्मण जीवन में हम निरंतर उन्नति प्रगति करते रहें, ब्राह्मण परिवार में अपनी संतुष्टता का भी अनुभव कराते रहें, ताकि वो समन संपर्क में आने वाली आत्माएं भी इस ब्राह्मण लाइफ के प्रति संतुष्ट रहें, खुश रहें, माया जीत बन के रहें, माया से बार बार धोखा ना खाएं। ये 5 प्रश्न थे आज के मूल्य संडे के मूल्य के, जो कि दूसरे पार्ट में आज हमने किए 5 प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न था, बाबा कहते हैं संतुष्टता जो है ब्राह्मण जीवन का विशेष खजाना है, श्रृंगार है। अगर हम श्रृंगार नहीं करें तो सज्जनी कैसे लगेंगे। बाबा ने इतना मूल्य श्रृंगार दिया है, रोज बाबा कहते हैं मैं तुम्हें श्रृंगार का सेट देता हूँ। कितने सेट अमृत वेले के बुक्स में है, अमृत वेले के ऊपर मुरलियाँ चली हैं कि स्वयं बाप बच्चों को अमृत वेले श्रृंगार करते हैं। तुम उस बाप की साजन के रूप में सजनीय हैं, तो सजनी अगर बिना श्रृंगार के साधन के साथ जाए कैसे लगेगी। तो हम रोज अपने आप को श्रृंगारें, संतुष्टता के गहने सदा पहन कर रखें, उन आभूषणों से सुशोभित रहें, बार बार देखें कि संतुष्टता के गहने को हमने पहन के रखा है, कहीं हमारा ये गहना कोई दूसरा तो नहीं चुरा कर ले जा रहा है। ये हमारा मूल्य खजाना है, संपत्ति है, संपदा है। तो स्वयं को चेक करें बार बार कि कहाँ तक हम संतुष्ट मणि बनकर रहते हैं, कहीं असंतुष्ट तो नहीं होती हैं। हर एक पार्ट को दे के संतुष्ट रहना है, क्या क्यों से परे रहना है उस क्वेश्चन में नहीं जाने का, अभी वो टाइम ही नहीं है। नहीं तो क्वेश्चन में क्वेश्चन की क्यू लंबी लग जाती है, फिर हम अपने अमूल्य समय को गंवा देते हैं। इसलिए बाबा कहते कुछ हो जाए संतुष्ट मणियाँ अपनी संतुष्टता की विशेषता को नहीं छोड़ती हैं। और संतुष्ट मणियों के फिर बाबा निशानियाँ बताते हैं, गोल्डन चांसलर होती है वो, सभी के प्रति उनका प्यार होता है, स्नेह रहता है, आकर्षित करती हैं, हर श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी बनाने का कोई भी उनको प्रयत्न करेगा, हर एक का दिल होगा कि हम उनसे बात करें, स्वतः दिल का प्यार होगा, प्यार लेने की पात्र आत्माएं होती हैं, माया जीत होती हैं, क्योंकि माया जीत किस लिए, क्योंकि आज्ञाकारी हैं, वो मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञाकारी आत्माएं हैं, इसलिए वो सदा माया जीत रहती हैं। 2 प्रश्न बाबा ने जो माया से संबंधित बताए कि बार बार अगर धोखा खाते हैं तो उसका कारण पहचान नहीं पाते हैं, और पहचान कम होने का कारण कि हमेशा बाप की श्रेष्ठ मत पर नहीं चलते हैं। जो भी श्रीमत हमको मिली है हमेशा श्रीमत हमको याद रहनी चाहिए, और डेली मूल्य में तो बाबा की यथा श्रीमत होती है, तो वो हम श्रीमत के पॉइंट ढूंढें, कहाँ तक हम चल पा रहे हैं, कहाँ नहीं चल पा रहे हैं उसको भी देखना है, और क्यों नहीं चल पा रहे हैं, कहाँ हमारी कमजोरी है सूक्ष्म से उसको छोड़ देना है। बाबा कहते हैं तो माया में परखने की शक्ति बहुत है, अगर श्रीमत पर नहीं चलते, कोई इसमें चलेंगे कोई इसमें नहीं चलेंगे, कभी याद करेंगे कभी नहीं करेंगे, कभी मंगसा में रहेंगे कभी नहीं रहेंगे, तो फिर माया अटैक कर देती है। तो माया के आने का रास्ता है, गेट है ही बाबा कहते हैं कमजोरी, तो उस गेट को हमेशा हमको बंद रखना, कौन सा, कमजोरियों का गेट। अगर किले की एक भी ईंट कमजोरी तो गिरने का खतरा रहता है। तो इसी तरह बाबा ने कल भी बताया था, किले में सेफ आत्माएं रहती हैं, कौन, जो सेकंड नंबर स्नेही की थी। तो हमें भी सेफ कैसे रहना है, स्वयं के जो किले को मजबूत बनाना है, अर्थात जो मर्यादाओं का किला है उसी के अंदर हमको हमेशा रहना है। और माया जीत बनने का सह साधन बाबा ने बताया, सदा बाप के साथ रहो। अलग अलग हम योग के अभ्यास करते हैं, कर सकते हैं, जैसे बाबा की छत्रछाया में चल रहे हैं, बाबा का बरदानी हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है, मैं बाबा की उंगली पकड़ कर चल रहा हूँ। कर्ण करावन हार बाबा मेरे साथ है, मुझे आत्मा द्वारा करा रहा है, मुझे उसने किसी भी कार्य के लिए निमित्त बनाया है, स्वयं भगवान मुझे देख रहा है। तो ये मायाजीत बनने के योग की कई विधियाँ हैं जो हम बार बार उन दृश्यों को देखते रहें, इमर्ज करते रहें, बाबा को अलग अलग तरीके से अपने साथ रखें। बाबा हमारा श्रृंगार कर रहा है, बाबा मुझे तिलक लगा रहे हैं, सदा विजयी भव, बाबा अलग अलग आभूषणों से मुझे श्रृंगार कर रहे हैं, बाबा मुझे अपनी श्रीमती याद दिला रहे हैं, या बाबा के महावाक्य मेरी बुद्धि में बार बार घूम रहे हैं। बाबा के मूल्य को बार बार ध्यान कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं। कितनी सारी बाबा ने हमें अनेक प्रकार की युक्तियाँ बताई हैं माया की कमजोरी से छूटने के लिए। अगर हम युक्तियों को अपनाते जाएं तो निश्चित तौर पर हम इस ब्राह्मण जीवन का सर्वोच्च सुख जो अतीन्द्रिय सुख, उसका हम निरंतर अनुभव कर सकते हैं, निरंतर खुश रह सकते हैं। क्योंकि आत्मा खुशी की तलाश में रहती है, प्राय देखा गया है। अगर इस ब्राह्मण जीवन में कोई खुश नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं वो दूसरी बातों में उलझा हुआ होता है। और इस ज्ञान का जो आत्मसात करता है उसको कोई भी अन्य आकर्षण आकर्षित नहीं करते हैं। और जो व्यक्ति ज्ञान से दूर दूर रहता है तो वो दूसरे आकर्षणों में चला जाता है। संगठन का बाबा ने उस काल भी बताया था ना, संगठन की कमी, अर्थात संगठन में अगर कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम बनता है तो ज्ञान योग छोड़ के वही उस तरफ लुढ़क जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं। और जो आत्मा पुरुषार्थ से प्यार करती है, पढ़ाई से प्रीत करती है, श्रीमत को अपने जीवन की एक ऑक्सीजन समझती है, उसको कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करती है। पहले वो अपने पुरुषार्थ का देखेगा जिसमें संगठन की उन्नति समाई हुई हो। ऐसा नहीं हम रोज रोज नई नई प्लानिंग करते हैं घूमने फिरने जाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, या ब्राह्मणों के घर में एक दो में जाके, चाहे हम गृहस्थ में भी रहते हैं वहाँ भी नए नए रूप से माया आती है। तो हमारा ज्ञान योग की हमको पिकनिक करनी है। हम दूसरे की भी हम कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा सारा ही टाइम उसमें योजनाएं बनाने में जाता रहे। हमें ज्ञान योग की नई नई योजनाएं बनाकर अपने को बिजी रखना है, संतुष्ट मणि बनना है, माया जीत बनना है, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना है, सदा बाबा की याद में रहना है, उमंग उत्साह में रहना है, श्रृंगार से सजे रहना है। तो बाबा कितनी चीज़ें हमको बताते हैं। तो बार बार हम मूल्यों को पढ़ेंगे, जीवन में लाएंगे, तो हम इस ब्राह्मण जीवन का जो सर्वोच्च सुख है उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।